山地，所以爸爸मुरली में हम बच्चों को बताते हैं कि दुनिया में जब एक दोस्त से मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। छोटे लोग जो होते हैं वो बड़ों के चरणों में झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। साधु संन्यासियों के भी चरण स्पर्श करते हैं। दुनिया में गुड मॉर्निंग गुड नाइट जो अंग्रेजों ने सिखाया वो भी बोलते हैं, लेकिन बाबा आज कह रहे हैं कि तुम्हें ये सब कहने की या करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये परिवार है, परिवार में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बाबा भी रोज हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो उसके द्वारा बाबा हम बच्चों को नम्रता का गुण, मधुरता का गुण जो देवताओं में थे वो रॉयल मैनर्स बाबा सिखाते हैं। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि जब हम बाप दादा बोलते हैं तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये बाप दादा किसको कहते हैं। दुनिया में भी देखो कईयों के डबल डबल नाम होते हैं, जैसे राधा कृष्ण जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे, कईयों के शिव शंकर नाम भी होता है। तो बाबा कहते हैं कि हमें दुनिया वालों को समझाना है कि हम बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, दोनों से हमें वर्षा मिलता है, इसीलिए हम प्यार से बाप दादा कहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली है 5/2/25 की। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहां ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद न आए, कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? जो बाबा के योगी बच्चे, योग बल, उनकी निशानी क्या होगी? तो उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, शॉक नहीं लगेगा कोई भी बात का। कहां पर भी उनका लगाव नहीं होगा। खास करके धक्का कब लगता है? तो बाबा कहते, समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं, कौन सी बात जानते हैं, कि इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। तो बाबा कहते, ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, लेकिन यहां पर ये सब बातें चल नहीं सकती। क्यों? दुनिया में तो कहते हैं, यहां बाबा कहते इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फैमिली है, परिवार है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे, ये शोभता नहीं है। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया, फिर आया, ये चलता ही रहता है। नमस्ते करने की कोई दरकार नहीं रहती। ये गुड मॉर्निंग का फैशन यूरोपियन से निकला है। अंग्रेज भारत में आए तो वो सिखा के गए थे गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने का। बाबा कहते ये फैशन नहीं तो आगे कुछ भी चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं या पांव पड़ते हैं, तो ये पांव आदि पड़ना ये नम्रता सिखाते हैं। तो यहां तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी, फिर भी कहना तो होता है ना। जैसे बाबा को कहेंगे कि बाबा नमस्ते, तो अब बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूं, इन द्वारा स्थापना कराता हूं। कैसे? सो तो जब बाप सन्मुख हो तब तो बच्चों को समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे। तो ये बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। तो दोनों को नमस्ते करना पड़े ना, बाप दादा दोनों को नमस्ते करना पड़े। बाप दादा नमस्ते। अगर बाहर वाले ये बातें सुनेंगे तो मूंझेंगे कि ये क्या कहते हैं बाप दादा। डबल नाम भी मनुष्यों के बहुत होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, कोई का नाम लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, ऐसे नाम होते हैं ना। तो ये तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए, मेल फीमेल दोनों का नाम साथ रख लेते हैं, तो अब ये तो है बाप दादा। तो इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तो जरूर बाप बड़ा ठहराना, वो नाम बल डबल है परंतु है एक। दुनिया में डबल नाम होते हैं लेकिन एक ही व्यक्ति के होते। फिर दोनों नाम क्यों इन्होंने रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो ये रॉन्ग नाम है। बाबा को और तो कोई पहचान न सके, तुम बच्चे ही कहेंगे बाबा को क्या कहेंगे कि बाप दादा नमस्ते। बाबा फिर कहेंगे जिस्मानी रूहानी बच्चे नमस्ते, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर बिल्कुल राइट है, तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी बच्चे भी हो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों के बच्चे, तो जिस्मानी भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन है, तो प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी है शिव बाबा का बच्चा। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर ये है रचना, तो इन्हों का रचयिता हो गया शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनका रचयिता हो गया शिव। अब शिव के लिए तो कोई कह न सके कि इनका क्रिएटर कौन है, शिव बाबा का कोई क्रिएटर नहीं, वही सबका क्रिएटर है। तो शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये है उनकी रचना, उन्हों के ऊपर है शिव, वो सब आत्माओं का बाप है। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है कि कब क्रिएट किया बाबा ने, कब क्रिएट किया, तो बाबा कहते नहीं ये अनादि है, आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र आदि अनादि अविनाशी है, परिवर्तन होता है खत्म नहीं होता। तो इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ये अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इस ड्रामा का कभी भी अंत नहीं होता। तो ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, है बहुत सहज। एक बाप के सिवाय और किसी से भी लगाव न हो, कोई भी मरे वाचिए, तभी तो गायन है ना, याद है कौन सा गायन है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, ज्ञान का हलवा। समझो कोई भी मर जाता है तो फिकर की कोई बात नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, ड्रामा अनुसार उनको इसी समय ही जाना था। इसमें क्या कर सकते हैं, जरा भी दुखी होने की कोई बात नहीं, ये है योग बल की अवस्था। ऐसा योग बल चाहिए जरा सा भी धक्का न लगे। अब लॉ कहता है ना, जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए, सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बचाते हैं, बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, बाप से कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, आकर हमको ले जाओ। अब इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ में ले जाना, ये तो बड़ा भारी काम हुआ ना। कितना भारी काम हो गया। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास तक रोते रहते हैं। अब बाप तो इतनी सारी आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ पर छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं, नेचुरल कैलमिटीज भी आने की है। ये सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड, रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में ये सब थे क्या? खाली भारत ही था, इतने सारे देश थोड़े थे, कॉन्टिनेंट थे ही नहीं। अब दुनिया में ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। कौन सी बात नहीं आती? कि हमारे राज्य में ये कोई भी थे नहीं। एक ही धर्म, एक ही राज्य, तुम्हारे में भी सब नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति ये बात बैठती है, हमारी दुनिया में एक ही धर्म था, एक ही राज्य था। अगर धारणा हो तो फिर वो नशा चढ़ा हुआ रहे। अब नशा देखो कोई को बड़ा मुश्किल चढ़ता है। कभी बाबा कहते ना कि खुशी होनी चाहिए, कभी बाबा कहते नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए, कभी बाबा कहते आनंद का अनुभव करो, तो कभी कहते हैं अति इंद्रिय सुख का अनुभव करो। तो इन चारों ही शब्दों में क्या फर्क है? सुख की वासना कब होती, नशा कब चढ़ता, आनंद कब रहता और अति इंद्रिय सुख कब रहता? तो बाबा कहते इन चारों ही शब्दों का अलग अलग अनुभव भी है तो अर्थ भी है। तभी तो बाबा अलग अलग टाइम उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला है सुख कब होता है, खुशी कब होती है? जब हमारी कोई चीज गुम हो गई फिर प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है, तो आत्मा को खुशी होती है। जो चीज हमें मिली उस चीज को हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो नशा चढ़ता है। उस चीज को जीवन में धारण कर लेते हैं, आनंद का अनुभव। और अति इंद्रिय सुख वो तो है ही इन इंद्रियों से पार। तो ऐसे ही जब बाबा हमें मिले, सुख का अनुभव हुआ, बाबा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ दूसरों के साथ शेयर किया, नशा चढ़ गया, उसको जीवन में धारण किया तो आनंद का अनुभव हुआ। तो ये चारों ही शब्द का अनुभव अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं कि नशा कोई कोई को बड़ा मुश्किल चढ़ता है, मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकालकर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, ये बड़ी कमाल है। हाँ, ये अंत में होगा, होगा जरूर, लेकिन बाबा कहते अंत में होगा। पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, फिर शरीर का भान टूट जाता है, बस अब तो हम चाहते हैं ये जैसे कॉमन हो जाएगा, जैसे नाटक वाले पार्ट बचाए फिर घर जाते हैं, तो ये देह रूपी कपड़ा तुमको यहाँ ही छोड़ना है, ये कपड़े यहाँ ही लेते हो और यहाँ ही छोड़ते हो, तो ये सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं। अल्फ और बे, अल्फ है सबसे ऊपर बे, कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। अच्छा तो बाकी शिव का क्या काम है? ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई नहीं जानता, कह देते हैं कि वो तो है सर्वव्यापी, सब में बाबा बैठा हुआ है, भक्ति में कह देते हैं, तो ये सब उनके ही रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि में ये पक्का हो गया है, इसीलिए सब तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सदगति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ तो कहते हैं कि ओल ब्रदर्स, फिर कह देते हैं ओल फादर्स, समझते ही नहीं। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं कि न मम्मा को न बाबा, कोई की भी मैमा कुछ भी नहीं है, शुभ बाबा न होता तो ये ब्रह्मा भी क्या करता? बाबा आए ब्रह्मा के तन में, तभी तो बाबा की वैल्यू हो गई। तो इनको याद करने से क्या होगा? हाँ तुम जानते हो कि इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं लेते, शिव बाबा का वर्षा ब्रह्मा थ्रू ले रहे हैं, तो ये भी उनसे वर्षा लेते हैं, तो याद उनको करना है। ये तो बीच में दलाल है, बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद एक दूसरे को करेंगे ना। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा, तो इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसीलिए गायन है सद्गुरु मिला दलाल के रूप में, तो सद्गुरु कोई दलाल नहीं है, सद्गुरु तो है निराकार, बल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते तो है परंतु वो कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक ही बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं। तो बाबा ने तुमको जो सिखाया है अब तुम औरों को भी ये रास्ता बताते हो और सबको कहते हो, सबको कहते हो कि अब देखते हुए भी नहीं देखो, बुद्धि शुभ बाबा की तरफ लगी रहे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। याद एक शिव बाबा को करता है न कि इनको। बुद्धि भी कहती है इनसे थोड़ी वर्षा मिलेगा, वर्षा तो मिलना है केवल एक बाबा से। स्टूडेंट्स को थोड़े याद करेंगे, स्टूडेंट्स टीचर को याद करेंगे। स्कूल में भी जो तीखे बच्चे होते हैं वो फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं, तो बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर पुरुषार्थ भी नहीं करते, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए कि प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होती है। निमंत्रण देकर के मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं। इसलिए खास करके आईपीस वीआईपीस को हम बुलाते हैं। अब देखो फिर आकर के क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन बड़ी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे, चलेंगे तो भी रॉयल्टी से, काम भी करेंगे, उनका बिहेवियर बहुत रॉयल होता, उनके चलन में भी बहुत फर्क रहता, उनमें चलने की बोलने की कोई फसीलत नहीं रहती। मेले में तो सब प्रकार के आ जाते हैं, किसी को भी मना नहीं की जाती। इसीलिए कहां भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग ही आएंगे, फिर वो औरों को जा करके सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर के देखे, क्योंकि कहां कहां फीमेल्स पर्दे नशीन होती है। कहां कहां बहनों के प्रोग्राम रखो तो बहनें ही आएंगी, तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी न आए। बाबा ने समझाया है कि पहले पहले तुमको ये समझाना है। पहली बात कौन सी समझाएंगे कि शिव बाबा निराकार है, शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो न सके। जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा, दादे की मिल्कियत पर हक लगता है। बल कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा उसको मिल जाएगा, ये यहाँ का कायदा है। समझते भी है कि इनको पैसा मिलने से एक वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे बने हुए हैं जो उनको देना पड़ता है। कहाँ कहाँ पेंशन मिलता है तो कहाँ कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट भी कई देशों में लोगों को देते हैं। तो गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का काम है देना, वो कहाँ यूज करता है वो उस व्यक्ति के पर निर्भर होता। तो ये बाबा तो अनुभवी है, एक राजा का बच्चा था। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में उसने खत्म कर दिया। बाबा के टाइम में 1 करोड़ कितना होता होगा। तो ऐसे भी बहुत होते हैं। शिव बाबा को तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है, लेकिन ये दादा कहते हैं कि हमने ऐसे मिसाल बहुत देखे हैं। तो बाबा कहते ये दुनिया बड़ी गंदी है, ये है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के राजाई घर को देखो, कैसे फर्स्ट क्लास है। अभी तुम बाप के द्वारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। तो ये है ही सत्य नारायण की कथा। ये भी तुम अच्छे समझते हो, तुम्हारी में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं है, इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो, क्या कहते हैं प्यार से, बाप दादा। ये तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहां पर भी जाए तो बच्चों को बाप दादा नमस्ते करते, बाप रेस्पोंड देंगे कि रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। तो ऐसा कहना पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं। दुनिया वालों की समझ में ये बात नहीं आती कि बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं। बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग अलग है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। तुम इन दोनों के बच्चे हो, तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है। तो हम हो गए बाप दादा के बच्चे। तो ये भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहे, और साथ साथ ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा तो जाकर दूसरा पार्ट बचाएंगे। तो हरेक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार ही नहीं रहती। उनको दूसरा पार्ट जाकर के बचाना है, वापस तो उसको बुला नहीं सकते। ड्रामा है ना, इसमें रोने की भी कोई बात नहीं है। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा चाकर बनते हैं। सतयुग में तो सब निर्मोही होते, यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। अब बाप को पा लिया फिर तो रोने की कोई दरकार नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं, कन्याओं के लिए बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर के नर्क में पड़ो। लौकिक बाप की बात करते हैं, फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नर्क में पड़ो। इससे तो बोलो, हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, तो इससे बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य और हमारा भी पुण्य हो जाएगा। तो बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे, तो इतना नशा बच्चों को होना चाहिए। देना हो तो दो, न देना हो तो न दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना क्या नहीं चाहते हो? इतनी मस्ती अंदर में होनी चाहिए। खास करके तो कुमारियों को बहुत खड़ा हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट्स, पहली बात है अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बात करनी है, मैनर्स के साथ बात करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है, नम्रता का गुण धारण करना है। दूसरी बात, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कब्र दाखिल होना है, इसीलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शुभ बाबा को ही याद करना है, किसी भी देह थारी को नहीं। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड्डियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन गुड्डियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड्डियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है, तो आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो ये भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो, स्थूल में भी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो हम भी बाबा के ते उन बातों को सत्य समझकर प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड्डियों के खेल को समाप्त करो। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जब बाबा को जरूरत होती है तब सहयोगी बनते हैं, उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं, उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। राजनेताएं धर्म नेताओं को ये दो गुणों का अनुभव कराओ, पवित्रता और एकता। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर है। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, और राज सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। धर्म सत्ता के आगे पवित्रता को सिद्ध करना और राज सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना है। ओम शांति।
बैठे रहेंगे, उसके बाद आप अनाउंस करना।
ओके,
अनाउंस नहीं करना है।
ओके,
ये अनाउंस है, डिटेल्स आप अभी बोल दीजिए, ये उसके बाद बैठे।
आफ्टर मेडिटेशन डबल फॉरेनर्स कैन स्टे बैक, जस्ट फ्यू अनाउंसमेंट्स आर देयर फॉर देम, सो फ्यू मिनट वी रिमेम्बर बाबा।